पंडित जी के लड़के हैं, पंडित जी हमारे भी बात हो जाने से नहीं आ सके, इसलिए अब यही आ रहे हैं। इनका हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इन्होंने हम लोगों को परिक्रमा कराई, इसलिए इनको हम लोग भेंट कर रहे हैं।
कितने रुपए?
शायद पहले हमने 500 दिया था और ये 5,100 कितना है?
कॉइन ऑल ऑफ कॉइन, इसमें गिनती नहीं है।
अच्छा भाई,
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवै वास्मि न जीवाम त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्ति अंगश्यामलिं सदा विरमितुं मन्देकतेन्दे वरं जाड्यं जागुडरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधा स्कंद निवेशितोजल। साधक भक्ति राज्य में प्रवेश करके गुरु पद आश्रय करके भजन करने में प्रवृत्त होता है तो पहले बहुत उत्साह होता है और अपने को समझता है कि मैं पूरा भक्त हो गया, और फिर कुछ दिनों के बाद में भजन की कठिन तत्व समझ में नहीं आने पर उसकी भक्ति शिथिल हो जाती है। फिर विरुद्ध विकल्प संकल्प विकल्प करता है, ये घर में रह करके करूं या त्याग संसार त्याग करके करूं। फिर सोचता है भक्ति में तो सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है और श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन भी कहा गया है, और श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन सभी कर्म आत्मनिवेदन जैसे महाराज बलि ने किया था वैसे एक ही कर्म। फिर सोचता है कि अर्चन श्रेष्ठ है, कभी श्रवण श्रेष्ठ है, ऐसा समझ करके संकल्प और विकल्प करता है। विषय संग्रह, विषयों के साथ में युद्ध होना, अनंतर विषय संग्रह। जिन लोगों का चित्त विषय भोगों में लगा रहता है, उन लोगों के लिए हरिनाम करने पर भी वो शुद्ध नाम नहीं होता, अनर्थग्रस्त, उन लोगों के लिए भगवान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। जो दिशा भक्त, जो वस्तु पश्चिम दिशा में रखी गई है, पूरब में जाने वाला व्यक्ति उसको नहीं पा सकता, उल्टा हो जाता है। वस्तु है पूरब की तरफ में और पश्चिम की तरफ में जा रहा है, नहीं मिलेगी। ऐसे ही विषय है एक तरफ में और भगवान है पूरब, विषय है पश्चिम, दोनों में से कोई एक रहना होगा। तो वो सोचता है भजन करने वाला, ये सब विषय पर मुझे बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहे हैं, मेरी भजन शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इन विषयों का त्याग करके हरिनाम का आश्रय करूंगा। ऐसा सोचने पर भी, विषयों का त्याग करने पर फिर भी विषयों का भोग हो ही जाता है, अभी दुर्बल है, अनर्थ है, इसलिए कहा गया है प्रत्याग करने में असमर्थ होने से अनेक घृणा के साथ में इस वस्तु को भोग करता है क्या कर, वस्तुओं के घृणा के साथ में भोग करता है और भगवान के कथित इस श्लोक शास्त्र वचन को उदाहरण मानकर उन विषयों के साथ में पहले भोग करता है, फिर युद्ध करता है, कभी हार जाता है, कभी विषय को पराजित कर देता है, तो कभी भोगों से विरक्त हो जाता है और कभी बाध्य होकर के भोगों को भोग लेता है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्वन्न सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान प्रत्यागो अनीश्वर ततो भजेत मान प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्मारण चतान कामान दुखार्दकांशर है। जो सागर कर्मों से विरक्त हो गया है, उसमें दुख बुद्धि रखता है, मेरी लीला कथाओं के प्रति श्रद्धालु हो और वह यह भी जानता है कि सभी भोग वासनाएं दुख हैं, संसार में जितनी भी वासनाएं हैं, भोग हैं, ऊपर से मालूम पड़ता है ये बड़ा सुखमय है किंतु है पूरा दुखमय। ऐसा जानने पर भी वो दुखों से दूर नहीं, जानता है माता पिता जानते हैं विवाह करके मैं सुखी नहीं हुआ, हमारे दादा पर दादा भी विवाह शादी करके पुत्र उत्पन्न करके भोगों में रह करके सुखी नहीं हुए, फिर भी अपने बेटे को और बेटी को विवाह जरूर देंगे, मान नहीं सकते। और जो विवाह करते हैं वो भी जानते हैं कि आज तक कोई सुखी नहीं विवाह से हुआ, फिर भी वो स्वयं ही विवाह करते हैं, जानते हैं कि विषयों का भोग करना बड़ा कठिन खराब है, तो भी विषयों का भोग करते हैं, जबरदस्ती कोई करा देता है ऐसा मालूम होता है, तो वो नहीं, कुछ कर्म फल ही ऐसे हैं जो भोग करा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उचित क्या है, भोग है तो उनको भोग लें, किंतु हृदय से उनको सच्चे हृदय से समझें कि जो मैं कर रहा हूं उपाय है बड़े दुखदाई है, ऐसा समझ करके उनको निंदा करते हुए कर्मों को, भोगों को अपना दुर्भाग्य समझें और यदि ऐसा करते हुए क्या पंखा चल छे यदि साधु संग करे और मन में दृढ़ता है कि ऐसा नहीं करूंगा चाहे जो कुछ हो जाएगा तो ऐसा दृढ़ निश्चय करने से मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगी, दृढ़ निश्चय कर ले। या विवाह हो गया भी है सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब धर्मों को कर्मों को सब छोड़ करके विवाहित स्त्री पत्नी पुत्र परिवार भजन करें। हमारा जो कर्तव्य है कि स्त्री का पालन करना चाहिए, पुत्र का जिसका है वो करें। जब विरक्त हो गया तो सब कर्मों से निवृत्त हो गया, उसका किसी कारण उसके ऊपर रह नहीं जाता है यदि भगवान का कोई भजन करता है। ऐसा समझ करके मनुष्य जन्म का एकमात्र कर्तव्य भगवान का भजन करना चाहिए। ऊपर में जो दो श्लोक अभी कहा जात श्रद्धो सारार्थ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने जो व्याख्या की उसका तात्पर्य यह है, इन दोनों श्लोकों में भक्ति के अधिकारी के प्रारंभिक स्वभाव का वर्णन किया गया है। जो साधक स्त्री पुत्र इत्यादि उत्पन्न विषय सुखों को दुख समझते भी हैं तो हैं, परंतु प्यार करने में असमर्थ नहीं है। वे विषय भावों को ये दुख पूर्ण है, हाय हाय क्या कर, निंदा के साथ में भोग तो कर लें और मन ही मन में संकल्प करते हैं हाय हाय हमारी आसक्ति दूर हो संसार से या न हो, भजन में कोटि कोटि विघ्न आए तो आए, अपराधों के कारण हमारा नरक भोग हो जाए तो हो जाए, काम को भी अंगीकार करना पड़े तो करे, किंतु मैं कभी भी किसी अवस्था में भक्ति को छोड़ नहीं सकता चाहे जो हो जाए, जहां भी जिस रूप में रहूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय यदि करे तो तू भक्ति हो। मन में क्या सोचे, अहो ये भोग विषय मेरे लिए महा अनर्थकारी है, अनर्थ करने वाले हैं, भगवत प्राप्ति के प्रतिकूल है। भरत जी ने भी तो छोड़ दिया सब कुछ, प्राचीन काल में जितने बड़े बड़े राजा थे या साधारण व्यक्ति भी 50 वर्ष होने के बाद ही में संसार छोड़ देते थे और एकांत रूप में वन में जाकर के भगवान का भजन करते थे। अतः वे अपने भोगों को भोगते भी हैं, निंदा भी करते हैं, दोनों करते हैं। इसी कारण विषय संग्रह नियम दामोदर
continued last time from the 6 stages of Anisita Bhajan. We heard Utsahan Mani, where the Saraki enters devotion by taking shelter of the feet of Gurudev and taking Diksha. Then after 1 or 2 days of Bhajan, he thinks, I become a pure devotee. upon not being able to understand the deeper tattvas concerning bhakti, he becomes depressed and his bhajan becomes, let me say, slackened. Then comes the next stage, yudhavikalpa. Sometimes he cannot understand, should I be married or should I be sannyasi? Then when his mind is oscillating between acceptance and rejection. This also goes with the limbs of devotion. Sometimes he performs Nam Sankirtan when he hears the glories of Nam Kirtan. But then when he hears the glories of Sravanakya Bhakti, hearing, then he becomes absorbed in that. But when he hears the glories of Atmana Vedanam, like Bali Maharaj, then he takes up that. Then he hears Ashram, then he performs that. His mind is not steady. Then comes Visaya Sankara. Fighting with the desire to enjoy materials, the objects of material enjoyment. The jiva has come to this world and covered by the mind and six senses. Therefore, to control the mind and six senses and to absorb them in the service of Bhagavan is very, very difficult. How can you achieve an object which is the east when you are walking towards the west? How can you achieve Bhagavan when you are engaging yourself in sense enjoyment? They are completely opposite. They are diametrically opposed. In such a stage, the devotee knows, oh, by engaging in material enjoyment, my ability to perform bhajan will be destroyed. Then again and again he tries to overcome material enjoyment, but he fails. Thus, by force, he is engaged in material enjoyment. Therefore, he enjoys objects of sense enjoyment, but meanwhile, according to the verse of the Srimad Bhagavatam, Yadato Shraveo, even while enjoying these objects of material enjoyment, he detests himself. He criticizes himself. Thus, while enjoying, he knows these sense enjoyments are the object, are the these sense enjoyments will cause unlimited suffering to me, but still he is forced to enjoy them. Thus, while enjoying them, he laments bitterly for his fallen condition. Thus, sometimes he defeats the objects of enjoyment, sometimes he is defeated by them. Such a sadhak is detached from the process of karma, and he has shraddha, or faith in the process of devotion. He knows perfectly well that material enjoyment gives unhappiness, suffering and misery. He knows that material enjoyment appears like happiness, but in the end it appears like poison. But still, he is forced to engage in acts of sense enjoyment. Even though the mother and father know, by marrying, I could not be happy. And even though they could understand that their parents by marrying could not be happy either, still they forced their own children to marry. And even though they notice themselves, they marry themselves. Thus you know this is actually the fruit of my, this is the result of my fruit activities. Thus while enjoying the object of the senses, he criticizes the results of his past karma and criticizes his enjoying propensity. He thinks, I am most unfortunate that I am engaging in these activities. Such a person who knows this, they will take a vow, I will never marry. And those who are married, they will have no attachment. They remember the verse that Sri Krishna spoke to Arjuna. Sarva dharmam pritita amamikam saranam prajamam sarva papadyo moksishyami mastucham. Then even if one who understands this will never marry, and one who is married will give up all attachment and understand that the one and only duty of the human form of life is to render devotional service to Sri Krishna. In his commentary in the Srimad Bhagavatam to this verse, Sri Vishnu Chakravarti Thakur describes this stage of devotion. He knows that this material enjoyment is the cause of suffering, but he cannot renounce it. Thus, he criticizes himself and detests himself. That time, within his mind, he makes a very firm promise. If my attachment is increasing or decreasing, if my offenses will take me to hell or not, if I experience millions of obstacles or not, doesn't matter what happens, I will never leave the practice of devotional service. One who thinks like that, that person can enter into the kingdom of bhakti. Thus, within his mind, the sadhak understands these material desires are anattas or unwanted things. They are unfavorable for devotion. But he remembers that previously many sadhus like Bharat Maharaj and other rishis, as well as ordinary persons, they completely left material life at the age of 50 and engaged in bhajan.
তৎপশ্চাৎ নিয়মক ক্ষমা সাধক কো কুছ উন্নতি হোনে পর ভজন কি লালসা অত্যন্ত অধিক বড় জানে পর और उत्साहमयी घन तरला बीड़ विकल्प विषय संग्रह इसकी स्थिति पार करने के बाद में कुछ भजन करने की उत्कंठा बढ़ती है, तो वो ऐसा संकल्प करता है कि आज से मैं 1,00,000 हरिनाम डेली करूंगा और समस्त वैष्णवों और धाम, नवदीप धाम, वृंदावन धाम, पूरी धाम के सब वैष्णवों को, सब धामों को मैं दंडवत प्रणाम साष्टांग एक व्यापार करूंगा और विषयी लोगों का एकदम संग नहीं करूंगा, सब समय वैष्णव सेवा में ही अपने को नियुक्त तो करूंगा। किंतु सामर्थ्य नहीं रहती, इसलिए कर नहीं पाता, कभी बीमार हो जाता है, इच्छा होने पर कभी भी बीमार हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई आवश्यक काम पड़ जाता है, कर नहीं पड़ता है। इसके लिए आउटसोर्स करता है। विषय संग्रह और नियमक क्षमा में एक भेद ये है, विषय संग्रह की दशा में विषयों को त्यागने में समर्थ नहीं होता, विषयों को त्याग नहीं करता, कर पाता, और नियमक क्षमा में भक्ति के उत्कर्ष साधन की क्षमता नहीं हो, उनको तो सह लेता है, विषयों को त्याग देता है, किंतु भक्ति के जो नियम है उसको करने में सक्षम नहीं होता। और अंत में तरंग रंगी भजन करने पर शुद्ध रूप में जब प्रवेश करने लगता है, अच्छी तरह से हरि कथा करने लगता है, भजन के जो कीर्तन पदावली है उसका सुस्वर से कीर्तन करता है, विशेष करके भजन में कुछ ऊपर पूछता है, रुचि आने लगती है, उस समय में जितने लोग उसकी बातों को सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, वो मुग्ध हो जाते हैं, और मुग्ध होने पर उनको बहुत आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, बहुत सी चीजें खाने पीने पहनने के लिए और भी जितनी चीजें हैं सब चीजें उनको दे देते हैं। तब वो इसी को कहते हैं तरंग रंगी, जैसे नदी में तरंग आती है ऐसे ये भक्ति में तरंग आती है। यदि कोई उसी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान में ही डूब गया और जो चीजें मिलती हैं उसको अपने भोग में लगाने लगा तो गिरा, बहुत ही कठिन चीज है, बहुत चेष्टा करके ऊपर उठा था और जब आदर मिलने लगा, स्त्रियां आने लगेंगी और लोग सब आने लगेंगे, फल मूल कंद खाने की पहनने की भोग करने की और जितनी चीजें हैं सब जैसे हम लोगों के पास में आती हैं, किंतु हम लोग अपने नहीं भोग करते, सावधान रह करके गुरु वैष्णव के चरणों में वैष्णवों को भगवान को ये सब अर्घ करके दे देते हैं। जो अत्यंत आवश्यक है वो भी भगवान का भोग समझ करके उसको ग्रहण करते हैं। यदि उसमें कोई नहीं हुआ, सह नहीं सका उस आदर को, तो वो पतित हो जाता है। बहुत से लोगों को देखा है भजन करते करते ऊपर उठे, और फिर स्त्रियों का ऐसा आकर्षण जो वो संन्यास भी छोड़ दिया और गृहस्थ बन गए। गृहस्थ क्या बन गए, वो क्या बंतासी बन गए। इसलिए इन सबसे सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों को भी सावधान रहना चाहिए, पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से रह करके भजन करना चाहिए।
Then comes the fourth stage, Niyamakshama, inability to follow rules of devotion. In this fourth stage, the sadhak has already crossed the previous three stages, which are Namaya, Gana, Tarana, Visaya, Sangha. He has crossed those previous three stages and now come to Niyamakshama. This is the fourth stage. Then, at that stage, he develops some greed for bhajan. He has crossed the previous stages, and now he begins to make some firm promises, sankalpa. Today, from today, I will chant 1 lakh harinam. I will give pranam to all the Vaishnavas, to all the places, to the devotees in the holy dham, like Jagannath Puri, Vrindavan, and
और वो के दीनानाथ के दीनानाथ के बोले दिए जिससे तुम मठे थकबो ना। और अभिराम जो छेलेटी ओके बोले तुम मठे थकबो ना। हमने एक बारण कर दिए कथा बोल। अब अभिराम से बोले तुम्हें मठ में परिक्रमा करो ना, तुम्हें जाए
गोवर्धने
जाए तो गोवर्धने
चलो
যাত্রী অনেক ছিল তো মঠে, মঠে যাত্রী অনেক ছিল, এই জন্য খুব মহিলা করে লেগেছে মঠে, মহিলা হয়েছে।
কখন আসবে?
আমি মন্দির পরিষ্কার টরিষ্কার করে মন্দিরকে, আমি মন্দির পরিষ্কার করে মন্দিরকে ঘরে কিছু আর ভক্তরা আসবে বম্বে থেকে, ওদের রেখে কে কি সেবা করবে না করবে সবাইকে ঠিক করে নিযুক্ত করে তারপরে আমি আসবো।
কখন আজকে আসবো, বিকাল দিকে আসবো, বিকাল বেলা।
But actually this is not bhakti, this is like waves on the top of the river. Just like the river is there but some waves are there, the waves are not really the river. In the same way, the love, puja and pratishtha, the name, fame, wealth and worship that comes with bhakti is not really bhakti. And what happens? The sadhak misuses all these things for his own enjoyment. Especially women will become attracted. People become attracted before they can offer them so many things. That time, what should we do? Krishna said, I've seen so many hundreds and hundreds fall from this stage. Because instead of taking those things and offering them to Hari Guru Vaishnava, he begins to enjoy these things. Even we've seen that sannyasis, they enjoy these things and they fall from sannyasis to become grihasthas. Thus they become vantasis, or one who eats his own vomit. Therefore, Buddha said, always try to be like Gurudevas. Always take these things and that much which is necessary. Understanding this is the prasad of Bhagavan, one should use it in a proper manner. And what is extra, or you know, everything actually should be offered to Hari Guru Vaishnava.
Hare Krishna. So we are leaving after breakfast for Giriraj Govardhan. On the wall there, just before the entrance, you can see. from their holy names or their devotees who have registered. Where is your dharmashala or your room? You can find your name right there. And one announcement for those who carry money with them, valuables. There are thieves, yeah, in Vrindavan. There are thieves, you know that. So sometimes they come in our sangha and they take your money or other valuables. It happens. At any moment it can happen. So don't make friendship with unknown persons. If you see anyone unknown or suspicious, report it. Then we will try our best to keep them outside, but still they enter. And we just want to warn you to be very, very careful with any valuables.
अभी हम लोग लास्ट प्रसाद लेकर के अभी